नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान और मतगणना आज होगी। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। एक रिपोर्ट।
उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक मंडल के सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर सकते हैं और वे संबंधित पार्टी के व्हिप से बाध्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। वर्तमान में लोकसभा में 542 सदस्य और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की कुल संख्या 781 है और जीत के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 6 बजे के बाद की जाएगी। पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव नए संसद भवन में आयोजित होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से पूरे देश में उत्साह है। लोगों का मानना है कि श्री राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से इस पद को समृद्ध करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। आधार कार्ड को बिहार में संशोधित मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पहचान को एक प्रमाण पत्र के रूप में पेश किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वे दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का आकलन और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला पहुंचेंगे और वहां राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी बाढ़ से प्रभावित स्थानीय लोगों से भी बातचीत करेंगे। वे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जमीन पर कार्य कर रहे आपदा मित्र बलों से भी मिलेंगे। श्री मोदी हिमाचल प्रदेश के भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का विमान से सर्वेक्षण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी विमान से सर्वेक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आगरा और मथुरा सहित कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मथुरा सबसे अधिक प्रभावित जिला है। जिले में कई रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। मथुरा में लगभग 5,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। बांके बिहारी मंदिर का रास्ता पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। वहीं आगरा में भी यमुना का पानी ताजमहल परिसर में घुस गया है। दूसरी ओर प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदियों का पानी शहर के कई हिस्सों में भर गया है। नेपाल सरकार ने युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 से अधिक घायल हुए। नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने बताया कि मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले लिया है। 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने फेसबुक और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था क्योंकि ये नेपाल सरकार के साथ पंजीकृत नहीं थे। इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक वस्तु और सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। परिषद ने जीएसटी संरचना को 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत से सरल बनाकर 5 और 18 प्रतिशत की 2-स्तरीय संरचना में बदल दिया है। जीएसटी में सुधार आम आदमी पर केंद्रित है और इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। 2020 प्रारूप में खेले जा रहे एशिया कप के इस पहले मैच में आज ग्रुप बी में अफगानिस्तान और हांगकांग आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।